पहली सदी की दुनिया में ना नियम बहुत सीधे थे। अगर किसी पर कर्ज है तो उसे चुकाना पड़ेगा, चाहे उसके लिए खुद को और अपने परिवार को गुलामी में क्यों ना बेचना पड़े।
बिल्कुल। और अगर किसी के पास शक्ति है तो उसका प्रदर्शन गरीबों को दबाने के लिए ही करेगा। मतलब सब कुछ ना कानून और ताकत की एक बेहद निष्ठुर व्यवस्था पर चलता था।
सही बात है, पर क्या हो अगर कोई आकर इस पूरी व्यवस्था को ही पलट दे, एक ऐसी दुनिया का प्रस्ताव रखें जहां नियम किसी स्प्रेडशीट या कानूनी किताब से नहीं बल्कि असीमित क्षमा से चलते हों।
ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है,
है ना? तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम डॉक्टर क्रेग कीनर द्वारा मैथ्यू 16 से 19 पर दिए गए लेक्चर के स्रोतों का अध्ययन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे उस पहली सदी के कॉन्टेक्स्ट में एक नए किंगडम ऑफ हेवन या ईश्वर के राज्य की धारणा ने सब कुछ झिंझोड़ कर रख दिया था।
और इस पूरे अध्ययन का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है कि उस जमाने के लोगों के लिए ये बातें कितनी, मतलब कितनी चौंका देने वाली थी। हम अक्सर इन कहानियों को एक आत्मिक चश्मे से देखते हैं, पर डॉक्टर कीनर के स्रोत बताते हैं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सामाजिक भूकंप था।
हाँ, जैसे शक्ति को देखने का नजरिया ही बदल गया। और इस शक्ति के प्रदर्शन का सबसे बड़ा उदाहरण हमें रूपांतरण यानी ट्रांसफिगुरेशन की घटना में मिलता है।
बिल्कुल सही।
जेजू अपने कुछ शिष्यों के साथ पहाड़ पर जाते हैं और अचानक उनका रूप बदल जाता है। वो एक चमकती हुई महिमा में दिखाई देते हैं और उनके साथ मोसेस और एलाइजा प्रकट होते हैं। ये दृश्य पढ़ने में किसी सिनेमैटिक क्लाइमैक्स जैसा लगता है।
हाँ, पर स्रोत बताते हैं कि उस वक्त के यहूदी सुनने वालों के लिए इसका एक बहुत ही गहरा संदर्भ था। पहली सदी के किसी भी यहूदी व्यक्ति का दिमाग इस कहानी को सुनते ही सीधा माउंट साइनाई की तरफ जाता।
ओ अच्छा, साइनाई की तरफ क्यों?
क्योंकि एक्सोडस 24 में जिक्र है कि मोसेस पहाड़ पर गए, वहां 6 दिन तक इंतजार किया और उसके बाद ईश्वर की महिमा एक बादल के रूप में आई।
इस घटना में भी ना बिल्कुल वैसा ही होता है। 6 दिन बाद येशु पहाड़ पर जाते हैं और फिर एक बादल से आकाशवाणी होती है कि उसको सुनो।
वेट, उसको सुनो, ये लाइन तो शायद किसी पुराने वादे की तरह इशारा कर रही है ना?
एकदम सही पकड़ा। ये पंक्ति सीधे तौर पर ड्यूटरोनमी 18 की तरफ इशारा करती है, जहां ईश्वर ने वादा किया था कि वो मोसेस जैसा एक नया नबी भेजेंगे और लोगों को उसकी आज्ञा माननी होगी।
पर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि येशु को सिर्फ मोसेस की जैसा नहीं बताया जा रहा, मतलब उनका दर्जा मोसेस और एलाइजा दोनों से बड़ा दिखाया गया है।
वो कैसे? देखिए, जब मोसेस पहाड़ से नीचे आए थे तो उनका चेहरा ईश्वर की महिमा देखने की वजह से चमक रहा था, जैसे चंद्रमा सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। पर यहाँ येशु किसी और की महिमा को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे।
अरे वाह, ये एक बहुत ही बारीक और जरूरी फर्क है। प्राचीन काल में ऐसी कहानियां प्रचलित थीं जहां महान लोग चमकने लगते थे, पर ज्यूइश थियोलॉजी में महिमा सिर्फ ईश्वर की होती है।
हाँ बिल्कुल।
तो येशु का इस तरह से चमकना ये दर्शाता है कि वो खुद उस महिमा का स्रोत है, वो खुद ईश्वर की उस शकीना महिमा का हिस्सा है।
ये तो एक बहुत ही विशाल शक्ति का प्रदर्शन था, पर कहानी में तुरंत एक झटका लगता है। पहाड़ की चोटी पर ये अद्भुत महिमा है और जैसे ही वो नीचे आते हैं
असफलता मिलती है।
हाँ, उनके बचे हुए शिष्य एक लड़के के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालने में नाकामयाब हो रहे हैं। अब हम अक्सर विश्वास को ना एक स्मार्टफोन की बैटरी की तरह मानते हैं। हमें लगता है कि जब तक बैटरी 100% चार्ज नहीं होगी तब तक कोई चमत्कार नहीं होगा।
ये बैटरी वाली सोच आजकल बहुत आम है,
है ना? पर जब शिष्यों ने नाकामयाबी का कारण पूछा तो येशु ने उनकी छोटी अल्प श्रद्धा को कारण बताया। पर क्या बात सच में विश्वास के आकार की थी?
श्रोत इस बैटरी वाली सोच को पूरी तरह गलत साबित करते हैं। येशु ने समझाते हैं कि अगर उनका विश्वास एक राई के दाने यानी मस्टर्ड सीड जितना छोटा भी होता तो वो पहाड़ हिला सकते थे।
अच्छा, तो समस्या साइज की नहीं थी?
बिल्कुल नहीं। असली समस्या ये थी कि उनका विश्वास किस चीज पर केंद्रित था। शिष्यों का ध्यान इस बात पर नहीं था कि उनका ईश्वर कितना बड़ा है, बल्कि शायद वो अपने खुद के अधिकार पर ज्यादा भरोसा कर रहे थे।
राइट, वो पहाड़ पर चमकने वाला ईश्वर घाटी में भी उनके साथ था, पर वो उस हकीकत से डिस्कनेक्ट हो गए थे।
सही कहा। और डॉक्टर कीनर इस किस्से में एक और डिटेल पर जोर देते हैं। मैथ्यू 4 के हवाले से वो बताते हैं कि उस जमाने में भी लोग हर बीमारी को भूत प्रेत नहीं मानते थे।
वेट, सच में? मुझे तो लगा प्राचीन लोग हर चीज को सुपरनैचुरल मानते थे।
यही तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। डॉक्टर कीनर बताते हैं कि गॉस्पल्स में मिर्गी यानी एपिलेप्सी और दुष्ट आत्मा के प्रभाव के बीच साफ फर्क किया गया है। हर बीमारी आत्मिक नहीं होती थी।
ये दिलचस्प है। तो उस समाज में भी आत्मिक समझ की अपेक्षा की जाती थी ताकि फिजिकल बीमारी और आत्मिक हमले के बीच का अंतर पहचाना जा सके।
बिल्कुल।
तो अब इस असीमित शक्ति के बाद सवाल ये उठता है कि ऐसी महानता को मानने वाले लोग आम समाज और कानूनी ढांचे में कैसे पेश आएंगे। यहाँ स्रोत एक बहुत ही रोचक इंसिडेंट पर जाते हैं, टेम्पल टैक्स।
हाँ, मंदिर का टैक्स। पहली सदी में हर व्यस्क यहूदी पुरुष को हाफ शेकल टैक्स देना होता था।
अच्छा।
और उस वक्त मंदिर के पास धन की कोई कमी नहीं थी।
नहीं थी ना।
अरे, मंदिर में एक सोने की बेल थी जिस पर लोग अपना सोना दान करते थे।
ओ।
वो एक बहुत बड़ा आर्थिक केंद्र बन चुका था।
तो जब पीटर से पूछा गया कि क्या उनके गुरु ये टैक्स देते हैं, तो जीसस ने एक लॉजिक दिया। वो कहते हैं कि एक दुनियावी राजा अपने खुद के बेटों से टैक्स नहीं लेता, क्योंकि जीसस खुद उस ईश्वर के पुत्र हैं, तो टेक्निकली उन्हें ये टैक्स देना ही नहीं चाहिए।
जैसे कि उन्हें छूट मिलनी चाहिए।
हाँ, जैसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है ना, किसी दूसरे देश के एम्बेसडर को आम लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती, पर जेसु अपने इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते।
सही बात है। वो लोगों को ठोकर ना खिलाने के लिए मछली के मुंह से सिक्का निकालकर टैक्स भर देते हैं।
इस घटना का संदेश चमत्कार नहीं है, बल्कि अधिकारों का बलिदान है। हालांकि वो मुक्त थे, पर उन्होंने सामाजिक ढांचे का सम्मान किया।
और यही सोच हमें अगले मुद्दे की तरफ धकेलती है। अगर कोई आम सामाजिक मर्यादा का पालन करता है, तो अपने खुद के समुदाय या चर्च के अंदर अनुशासन कैसा होना चाहिए।
यहाँ स्रोत मैथ्यू 18 के सामुदायिक अनुशासन पर आते हैं, जिसमें तीन कड़े कदम बताए गए हैं। पहला, अकेले में बात करना, फिर दो तीन गवाह ले जाना, और फिर असेंबली या चर्च के सामने लाना।
और ये दो या तीन गवाहों वाला कानून हवाई नहीं था, ये सीधे ड्यूट्रोनॉमी 17 और 19 पर आधारित था। डेड सी स्क्रोल्स में भी हम देखते हैं कि उनके पास कठोर अनुशासन के नियम थे, जिसमें समुदाय से निकाल देना शामिल था,
जिसे हैंडेड टू सेटन भी कहा जाता था, है ना?
हाँ, जिसका मतलब था ईश्वर की सुरक्षा वाले समुदाय से बाहर कर देना।
इस प्रोसेस में एक टेक्निकल टर्म आती है जो बड़ा मिस्टीरियस लगती है, बांधना और खोलना, यानी बाइंडिंग एंड लूजिंग। सुनने में तो किसी जादू टोने या भूत प्रेतों को बांधने जैसा लगता है,
पर हिस्टोरिकली इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। डॉक्टर कीना स्पष्ट करते हैं कि रैबिनिक जुडाइज्म में ये एक कानूनी शब्दावली थी। इसका अर्थ असुर और मुत्तर से था, यानी किसी चीज की मनाही करना या इजाजत देना।
ओ, तो ये लेजिस्लेटिव अधिकार की बात थी, किसी सुपरनैचुरल आत्मा को पकड़ने की नहीं।
बिल्कुल। और इसी संदर्भ में वो मशहूर वाक्य आता है, जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे हैं, मैं उनके बीच हूँ।
आजकल लोग इसको किसी भी आम प्रार्थना सभा के लिए बोल देते हैं।
पर कॉन्टेक्स्ट देखिए, ये दो या तीन लोग दरअसल वही गवाह हैं जिनका जिक्र अनुशासन प्रक्रिया में हुआ है।
राबीज मानते थे कि जहाँ दो तीन लोग कानून का अध्ययन करते हैं, वहाँ ईश्वर की शकीन होती है।
अच्छा।
तो जब ये गवाह गंभीर फैसला लेने आते थे, तब वहाँ ईश्वर की शकीना उनके मार्गदर्शन के लिए मौजूद होती थी। ये सिर्फ वर्शिप नहीं, बल्कि इंसाफ का संदर्भ था।
और इंसाफ की बात करें तो वो कठोर लगने लगता है, पर स्रोत याद दिलाते हैं कि अनुशासन हमेशा आखिरी रास्ता होना चाहिए। पहला रास्ता है क्षमा,
फॉरगिवनेस।
जब पीटर पूछते हैं कि कितनी बार माफ करूं, क्या 7 बार काफी है? उस वक्त के हिसाब से तो 3 बार माफ करना काफी माना जाता था। पीटर ने सोचा होगा, 7 बोलकर मैं बहुत उदार दिख रहा हूं, पर यीशु कहते हैं 70 × 7
यानी अनंत क्षमा। और इसको समझाने के लिए वो जो पैराबल सुनाते हैं, राजा और नौकर का, जिसमें नौकर पर 10,000 टैलेंट्स का कर्ज था।
और इस नंबर की विशालता तो देखिए, 10,000 को ग्रीक में मेरियार्ड कहते थे, जो उनका सबसे बड़ा नंबर था, और टैलेंट सबसे बड़ा वजन।
स्रोत बताते हैं कि एक आम मजदूर की एक दिन की कमाई 1 डिनारियस होती थी, और एक टैलेंट 6,000 दिनारी था। इस हिसाब से 10,000 टैलेंट्स चुकाने के लिए करीब 2,30,000 साल रोज मजदूरी करनी पड़ती।
अरे बिल्कुल नामुमकिन। डॉक्टर कीना हेरोड द ग्रेट का उदाहरण देते हैं, जिसकी 1 साल की टैक्स रेवेन्यू भी सिर्फ 800 टैलेंट्स थी।
वेट, सच में पूरे रीजन के रेवेन्यू सिर्फ 800? और इस नौकर पर 10,000 का कर्ज।
हाँ, ये जानबूझकर बनाया गया एक हाइपरबोली था ताकि पता चले कि ये कर्ज कभी चुकाया ही नहीं जा सकता, पर राजा उस कर्ज को पूरी तरह माफ कर देता है।
मैं तो ऐसे सोच रही थी जैसे किसी ने आपका पूरे देश की जीडीपी के बराबर का बैंक लोन माफ कर दिया हो, आपको जिंदगी भर की आजादी मिल गई, पर बाहर आकर आप किसी छोटे कर्मचारी का गला दबा रहे हैं क्योंकि उसने आपके कल के लंच के $20 नहीं चुकाए।
हाँ, बहुत सही उदाहरण है। पैराबल में नौकर वही करता है, अपनी साथी का गला दबाता है जिस पर सिर्फ 100 दिनारिया के कर्ज था।
गला दबाना सच में होता था क्या उस वक्त?
हाँ, ये पहली सदी में कर्ज वसूलने का एक क्रूर असली व्यवहार था। रोमन्स और ग्रीक्स में डेटर्स को टॉर्चर करना आम था। तो श्रोत बताते हैं कि मूल संदेश ये है कि ईश्वर के सामने हमारे पाप उस 10,000 टैलेंट्स की तरह हैं।
हम उस असीमित कर्ज को कभी चुका नहीं सकते।
सही कहा। ईश्वर की सजा तब आती है जब एक बहुत बड़ी क्षमा को इंसान ठुकरा देता है।
और ये क्षमा का सिद्धांत थ्योरी में बहुत अच्छा लगता है, पर जब ये हमारे सबसे निजी रिश्तों जैसे एक टूटते हुए विवाह से टकराता है तो क्या होता है?
वहां कानून की स्प्रेडशीट और किंगडम के आदर्श का सबसे बड़ा टकराव होता है। स्रोत बताते हैं कि उस वक्त यहूदी कानून में तलाक को लेकर 2 गुटों में बहस थी।
शम्माई और हिलेल विचारधारा है।
हाँ, शम्माई काफी कठोर थे। उनका मानना था तलाक सिर्फ अनफेथफुलनेस पर हो सकता है, पर हिलेल की व्याख्या बहुत ढीली थी। मतलब पति किसी भी वजह से तलाक दे सकता है, अगर खाना जला दिया या कोई और पसंद आ गई।
ओ गॉड। और हिलेल विचारधारा उस वक्त ज्यादा ताकतवर थी।
पर जीसू इन दोनों कानूनी व्याख्याओं में फंसते ही नहीं, वो सीधे जेनेसिस 2 पर जाते हैं, यानी सृष्टि के आदर्श पर।
रूप से वो बर्बाद हो जाती।
हाँ, बच्चे भी कानून के मुताबिक पिता के पास रह जाते थे।
बिल्कुल। जीजा का कानून बाहर से कठोर लगता है, पर असल में वो सोसाइटी की उन कमजोर महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन था।
वो कह रहे थे कि आप औरतों को इस तरह कूड़ेदान में नहीं फेंक सकते।
हालांकि उन्होंने अनफेथफुलनेस का एक्सेप्शन दिया था, पर इस संरक्षण को सुनकर मर्दों का क्या रिएक्शन था?
शिष्यों ने तो कह दिया कि तो फिर शादी ना करना बेहतर है। अमर्द या किन्नर का कॉन्सेप्ट देते हैं,
जो उस वक्त शर्म की बात मानी जाती थी।
हाँ, जिसको कहते हैं 3 तरह के यूनिक होते हैं, जो पैदाइशी हैं, जो लोगों द्वारा बनाए गए हैं, और जो किंगडम के लिए खुद को ऐसा बनाते हैं,
यानी जो आजीवन सिंगल रहते हैं।
स्रोत बताते हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट, जीसू और अपोस्टल पॉल इसका उदाहरण थे। वैसे पॉल की बात पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फुटनोट मिला मुझे।
आप सैनहेड्रिन वाली बात कर रहे हैं।
हाँ, लोग सोचते हैं कि पॉल सैनहेड्रिन के मेंबर थे इसलिए उनकी शादी हुई होगी, क्योंकि वहां मेंबर होने के लिए विवाहित होना जरूरी था। पर डॉक्टर कीनर इसको गलत साबित करते हैं। एक्ट 26 में पॉल ने कहा था कि उन्होंने विरोध में अपना वोट डाला। उस जमाने में वोट डालना एक मुहावरा था जिसका लिटरल मतलब पेबल या पत्थर डालना था, सिर्फ सहमति जताने का तरीका।
ओ, तो वो किसी ऑफिशियल काउंसिल में वोटिंग नहीं कर रहे थे, वो आजीवन सिंगल ही थे।
बिल्कुल। ये सारे विषय हमें एक ऐसी दिशा में ले जाते हैं जो ताकत के बिल्कुल खिलाफ है। और इसका सबसे भावुक उदाहरण है जब लोग अपने छोटे बच्चों को येसु के पास लाते हैं।
और शिष्य वही कानूनी स्प्रेडशीट ले आते हैं। उन्हें लगता था येसु रोम को हराने जा रहे हैं और ये बच्चे सिर्फ एक रुकावट हैं।
पर येसु उन्हें डांटते हैं। उनका राज्य रोम के खिलाफ किसी मिलिट्री कू के बारे में नहीं था। उनका राज्य मार्जिनलाइज लोगों के लिए था, अंधे भिखारियों और उन बच्चों को गले लगाने के बारे में था जिनकी समाज में कोई पोजीशन नहीं थी।
मतलब शक्ति जब अपने सबसे महान रूप में होती है तो वो किसी को दबाती नहीं, बल्कि उन्हें उठाती है जिनके पास शक्ति नहीं है। अगर हम इस पूरे विश्लेषण को संक्षेप में देखें तो यीशु का उपदेश उस स्प्रेडशीट वाले मनुष्य को उसकी असलियत दिखाता है।
बिल्कुल।
हमारा विश्वास एक राई के दाने जितना भी नहीं है, हमारा कर्ज 10,000 टैलेंट्स जितना विशाल है, फिर भी किंगडम ऑफ हेवन उन्हीं लोगों के लिए है जो इन बच्चों की तरह सरल और विनम्र हो जाते हैं।
स्रोतों के इस सार से ना मैं बस एक ही छोड़ने वाला सवाल पेश करना चाहूंगा। आज हमने समझा कि पहली शताब्दी के कानून सिर्फ मनुष्य के कठोर हृदय को काबू में रखने के लिए थे, ना कि ईश्वर का मूल आदर्श। अगर आज की आधुनिक दुनिया में हम सब कानूनी नियमों की उस स्प्रेडशीट से बाहर निकलकर सीधे सृष्टि के मूल आदर्श के अनुसार अपने हर रिश्ते को जीने लगें, जहां क्षमा अनंत हो और दूसरों का सम्मान खुद से ऊपर हो, तो क्या हमारा सामाजिक ढांचा पूरी तरह से ढह जाएगा, या फिर हमें पहली बार किसी असली आजादी का एहसास होगा?
नियम वर्सेस आदर्श, कानून की सुरक्षा या
क्षमा की आजादी। इस गहरे विश्लेषण में फिलहाल बस इतना ही। इन स्रोतों पर विचार करते रहिए।